نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے علامات قیامت کا بیان اس بک میں سے ہم علامات صغرا کو دیکھ رہے تھے اس میں سے آج ہم اگلی علامت دیکھیں گے کثرت الحرج خون ریزی کی کثرت پیج ہے 138 138۔ حرج پیچھے بھی کئی دفعہ گزرا حرج، آج اس کے ٹاپک کے اندر کچھ حدیثیں آئیں گی تو سمجھ لیجئے کہ حرج ہے، ہا پہ زبر ہے، را پہ جزم ہے اور جیم پہ زیر ہے، تو حرج بولیں گے اس کو۔ ہمارے پاکستانیوں کے مخارج بڑے فرق ہوتے ہیں، ہم اس کو خرج کہہ دیں گے، حرج کہہ دیں گے یا خرج کہیں گے، اب ہماری اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، قتل کرنا۔ تو قیامت کے قریب خون ریزی کی کثرت ہوگی، قیامت سے قبل خون ریزی اور قتل عام ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے شب و روز آئیں گے کہ ان میں علم دین اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اترے گی۔ مراد کیا ہے کہ عام ہوگی، اور حرج عام ہوگا، اور حرج کا مطلب ہے قتل۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت گھٹ جائے گا، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ عرض کیا گیا، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قتل کرنا۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ اگلی روایت ہے، قیامت سے قبل خون ریزی اس قدر ہوگی کہ قتل کرنے والے کو یہ علم نہیں ہوگا کس نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ مطلب یہ کہ بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ اب اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کے نبی کا قسم کھانے کا۔ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کثرت خون ریزی کی وجہ سے، اور یوں قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب اس حدیث کو سنتے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں وہی سوال آئے جو صحابہ کے میں تھا، کہ جس نے قتل کیا اس کو تو اس وجہ سے جہنم ملے گی کہ اس نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کیا، لیکن جو مقتول تھا، جو مارا گیا، اس کو کیوں آگ میں ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیونکہ وہ بھی تو اسی ارادے میں تھا نا، اس کی بھی تو نیت تھی نا، اب دعو تو ایک کا ہی لگنا تھا، تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اور اس کی کوشش کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے جو حالات ہیں یہ سب دکھتا نہیں ہے۔ راہ جاتے لوگوں پہ گولیاں برستی ہیں، مسجدوں میں جانے والوں کی جان محفوظ نہیں ہے، بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں ہم احادیث کو پڑھتے ہیں نا، تو اس سے ہمارے دل میں شرح صدر بھی ہوتا ہے۔ یہ موضوع میں اپنے لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو زیادہ آسان لگے، لیکن پھر میری بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فرق مٹے گا نا، کیونکہ حدیث سامنے پڑھنے سے شرح صدر ہوتا ہے۔ تو آج اگر دنیا میں قتل عام ہے، جنگوں کی صورت میں دیکھ لیجئے، لڑائی جھگڑوں کی صورت میں دیکھ لیجئے، اسی طرح بہت سارے کرمنلز ہیں کہ جو قتل بھی کرتے ہیں، لوگوں کی جان لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا مال بھی لیتے ہیں، تو یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ پھر اگلا مسئلہ کیا ہے کہ صبح کے وقت ایک مسلمان اپنے بھائی کے جان اور مال کو حرام سمجھے گا اور شام کو حلال سمجھ لے گا، شام کے وقت ایک مسلمان اپنی بھائی کے جان و مال کو حرام سمجھے گا اور صبح کے وقت حلال سمجھے گا۔ روایت ہے ترمذی میں، آپ کا ارشاد مبارک ہے، ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ بھی سوچیں گے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح میں مسلمان ہے تو شام کو کافر ہے، تو حسن بصری سے بھی کسی نے پوچھا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صبح کے وقت اپنے بھائی کے خون، عزت اور مال کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا، یعنی صبح کے وقت ان میں سے کوئی غلط کام نہیں کرے گا، لیکن शाम को हलाल समझेगा, और एक आदमी शाम के वक्त अपने भाई के खून, इज्जत और माल को अपने ऊपर हराम समझेगा, लेकिन सुबह के वक्त इसे हलाल समझ लेगा। ये तिर्मिज़ी की रिवायत। तो इससे क्या पता चला हमें कि कत्ल आम हो जाएगा। आज भी देखिए कि लोग कत्ल को तो हो सकता है बड़ा गुनाह समझते हों, लेकिन दूसरे की इज्जत लेने को कौन बड़ा गुनाह समझता। ये ख़वातीन जो बैठ के गुफ्तगू फरमाती हैं और जो चुगलियाँ होती हैं और गीबतें और खामखा सोचते हैं, उसने ये कहा होगा, हाँ हाँ वो ऐसी ही है, नहीं उसकी बेटी भी ऐसी है, नहीं तुम्हें नहीं पता कैसा है, ये क्या है। देखिए, हम सबको अपना मुहासबा करना है, अपनी ज़ुबान को जब तक दूसरों के बारे में कम से कम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम खतरे में। नीयत करें कि मैंने किसी के खिलाफ ना बात सुननी है ना बोलनी है। किसी का कोई माल ले ले हम उसको चोर कहते हैं, कोई किसी की जान ले ले हम उसको कातिल कहते हैं, तो जो किसी की इज्जत पामाल करे उसको क्या कहते हैं, उसको हम गॉसिप कहते हैं, उसको हम कहते हैं वक्त गुजारी की बातें, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, ठीक है। तो हमने अपने आप को दूसरों के लिए खूबसूरत बनाना है। आप देखिए कि इज्जत बहुत कीमती चीज़ है। माल चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आ जाएगा, जान चली जाए चली गई, लेकिन इज्जत चली जाए तो बस दफ़ा इंसान जिंदा दरगोर हो जाता है। तो किसी की इज्जत पे हर्फ नहीं डालना। कभी किसी की बेटी, किसी के बेटे, किसी के शौहर के बारे में बात करें तो 10 दफ़ा सोचें। और अल्लाह के नबी ने एक बड़ा खूबसूरत मेयार दिया, और वो क्या है कि जो मामला तुम अपने लिए नहीं पसंद करते वो अपने भाई के साथ भी ना करो। जो बात मैं नहीं पसंद करती ना कि कोई मेरी कहीं करे, तो मुझे भी नहीं किसी की करनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं चाहती कि कोई मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो मुझे भी किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कि अगला मसला क्या है कि इंसान अपने ही अजीज़ों अकारिब, अपने ही भतीजे भांजों और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को कत्ल करेगा। यानी दूर के लोग तो दूर के लोग हैं, करीब के लोगों में भी कत्ल होगा। इसकी रिवायत है अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत से पहले हर्ज होगा। मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह हर्ज क्या है, आपने इरशाद फरमाया कत्ल। बाद सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कत्ल तो अब भी होता है, हम एक एक साल में कितने कितने मुशरिकों को कत्ल कर देते हैं। आपने फरमाया हर्ज से मुराद मुशरिकों का कत्ल नहीं, बल्कि तुम मुसलमान आपस में एक दूसरे को कत्ल करोगे, हत्ता कि आदमी अपने पड़ोसी, अपने चचाजात भाई और अपने दीगर उज़ा अकारिब यानी अजीज़ अकारिब इनको कत्ल करेगा। इब्ने माजा की रिवायत है। तो आज आप देखिए मुसलमानों के हाथों मुसलमानों के कत्ल है। आम सतह पर भी देखें, आप मुल्की सतह पर देखिए, दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म है हर जगह काफिर तो नहीं खून बहा रहे। कई मुल्कों में आज आप देखिए कि जो जिहाद चल रहा है वो मुसलमानों का मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। कभी हुकूमत जुल्म करती है रियाया पे, तो कभी रियाया आवाम पे हाथ उठाने लगती है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ज़मीनों आसमान की सारी मखलूक एक मोमिन के कत्ल में शरीक हो तो अल्लाह ताला इन सब को मुँह के बल जहन्नुम में डाल देगा। तिर्मिज़ी की रिवायत है। इसको आपने गौर से सुना, सारी दुनिया को अल्लाह ताला आग में डाल देगा अगर एक मोमिन को कोई मारे। सवाल पैदा होता है क्यों। आप इसको नोट कीजिए, देखिए मिसाल है, एक शख्स उसका नाम है अब्दुल्ला, मोमिन है, दिन में 5 वक्त मस्जिद में जाता है, नमाज अदा करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि वो अच्छे काम करता है, रिश्तेदारों के हक पूरे करता है, सदका खैरात करता है, रमज़ान आएंगे तो रोज़े रखेगा। उस एक शख्स को कत्ल करके कातिल ने नेकियों के ये सारे दफ्तर बंद कर दिए। तो आप कह सकते हैं कि एक मोमिन का कत्ल 5 नमाजों का कत्ल है, एक दिन में, एक साल में 30 रोज़ों का कत्ल है। तो अल्लाह सुब्हान तआला को मोमिन की मौत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अल्लाह ताला को अच्छा लग रहा होता है कि ये नेकियां कर रहा होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जब भी कत्ल का दरवाज़ा खुलता है ना, तो फिर हाथ खुल जाता है। कहते हैं कि कातिल के लिए सबसे पहला कत्ल मुश्किल होता है, उसके बाद आसान होता है। आपने सुना होगा 100 लोगों का कातिल, 100 बच्चों को कत्ल किया, और उससे जब पूछा गया तो शुरू के कत्ल करने की कोई वजह हो सकती है, हो, लेकिन जो बाद में कत्ल हुए थे वो कौन से थे? आदत, सिर्फ उसको ये चीज़ें आदत पड़ गई थी, बुरा ही नहीं लगता था। और वो हदीस भी आपने कई बार सुनी होगी कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, 99, और बिलाखिर उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने इतने गलत काम कर दिए, तो उसके बाद वो किसी आबिद के पास चला गया। आबिद कौन होते हैं? जो इबादत तो करते हैं लेकिन दीन का इल्म नहीं होता, जाके उससे पूछा कि बताओ हल ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा है? तो उसने क्या कहा कि तेरी तौबा कैसे हो सकती है, कत्ल तो एक भी बहुत बड़ा गुना है, तूने तो इतने गुना किए हैं। उसने कहा अच्छा मेरी तौबा नहीं, फिर तू क्यों जिंदा है, तुझे मार के 100 बुरे कर लेता हूँ, सेंचुरी बुरी हो गई। अब क्योंकि उसके अंदर गिल्ट था ना कि मैं तौबा करना चाहता हूँ और तुम मुझे तौबा नहीं करने दे रहे। देखिए ये 100वां कत्ल जो है ना असल में इसकी तौबा का हिस्सा था। जब भी कोई शख्स बुरा काम करे कभी उसको आर ना दिलाए। हमारे यहाँ कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे आ गई, दिस एंड दैट। नुकसान क्या होता है कि बस दफ़ा लोग अपनी बुराइयाँ छोड़ना चाहते हैं, क्यों नहीं छोड़ पाते कि लोग क्या कहेंगे, बातें क्या करेंगे। आज भी आप देखिए आप सिस्टर्स कभी क्लास में आते आते छूट जाता है तो दोबारा क्या सोच के क्यों नहीं आते, नहीं फिर लोग कहेंगे इतनी छुट्टियाँ करके आई हैं। तो कभी भी किसी को ना डिस्कस करें, देखिए खुद को इतना मसरूफ कर लें, अपनी ज़ुबान को हाथ में पकड़ के रखा करें कि मैंने इसको नहीं इस्तेमाल करना। एक मौके पे अबू बकर सिद्दीक के पास से हजरत उमर जब गुजरे तो देखा कि अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जुबान यूं पकड़ी हुई है जैसे उंगली से टिप को पकड़ के रखा हुआ। कहा अबू बकर ये आप क्या कर रहे हैं? कहा कि ये बड़ी तेज खाटी हो गई है, मैं इसको अपने काबू में कर रहा हूँ। तब सोचिए कि अबू बकर सिद्दीक की जुबान अगर तेज थी तो हमारी जुबानें कैसी हैं, हमारा क्या हाल है। तो लिहाजा जुबान का इस्तेमाल कम से कम, इससे लोगों की इज्जत भी जाती है और जान तो जाती ही है। इसके बाद आप देखिए कि अगले फितने जो कयामत की कुर्ब के हैं उसमें क्या है, फितनुल बतूनी वल फुरूज, पेट और शर्मगाह के फितने। बतून जो है ना बतन से है, बा तो ए नून, उर्दू में हम बोलते हैं जाहिर व बातिन, तो बतन कहते हैं छुपी हुई चीज को। इससे पहली बात तो ये पता चलती है कि पेट छुपा होना चाहिए, ये दिखाने की चीज़ नहीं है। फिर दूसरी बात है कि फुरूज फरज से, फरज कहते हैं सुराख को, और इससे मुराद क्या है, शर्मगाह, प्राइवेट पार्ट। क़यामत के करीब पेट और शर्मगाह के फितने कैसे होंगे, आइए देखते हैं। क़यामत से पहले बेशुमार लोग पेट और शर्मगाहों के फितनों में मुब्तला होंगे। हजरत अबू बरजल असलमी, देखिए जो नाम होते हैं ना इसको भी गौर से सुना करें क्योंकि हमारी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। बेस्ट तरीका नाम देखने का क्या है, ऊपर हदीस में क्या है। अगर आप देखें तो बरजतल असलमीश, ठीक है, तो बरजतल असलमीश, इनसे रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारे पेटों को गुमराह करने वाली ख्वाहिशात, शर्मगाह को गुमराह करने वाली ख्वाहिशात और गुमराह करने वाले फितनों के बारे में बहुत ज़्यादा डर है। इसे बज़ार ने रिवायत किया, इधर ऊपर देखे लिखा तो अहमद है तो हदीस अहमद की है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट के फितने क्या हैं और इसी तरह ख्वाहिशें क्या हैं। तो अब देखें कि पेट के फितनों से मुराद सबसे पहले क्या होगा कि पेट में हराम चीज़ों का जाना, खाने की चीज़ें माकूलात कहते हैं उसको अकला या किलू से, और पीने की चीज़ों को अरबी में मशरूबात कहते हैं शरीब यशरबू। पेट में कोई चीज़ जाए और बंदे को ये फिक्र ही ना हो कि हलाल किया कि हराम किया। बस आप देखें कि शराब, सुअर का गोश्त, पिग का गोश्त, इसी तरह गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा, किसी कब्र वाले की खुशी के लिए कोई चीज़ की हुई है, कोई किसी इमाम के नाम की कोई चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो गैर अल्लाह के नाम की है, ये सब पेट का फितना है। फिर इसी तरफ देखिए कि पेट के फितनों में हराम कमाई है, सोर्स ऑफ इनकम जब इंसान का नाफरमानी का हो, मसलन देखिए रिश्वत, ड्राइवरी। अब जिसने रिश्वत खाई और अपने बच्चों के पेट भरे तो उसने पेट को फितने में डाल दिया। फिर इसी तरफ देखिए सूद। अब आप देखिए कि यहाँ से इसको थोड़ा सा समझिएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खा लें तो क्या होता है, रात को पेट में जलन होती है, सुबह वॉशरूम में जाएं तो तकलीफ होती है। ये उन मिर्चों का ज़ाहरी असर है हमारे पेट पर। बिल्कुल इसी तरह जो हराम होता है ना, जाहिर देखने में तो देखे ना, अगर आपने दूध खरीदा हलाल कमाई से खरीदा या दूसरी कमाई से खरीदा सेम है ना, लेकिन जिस तरह मिर्चों का या बहुत नमक का बहुत गर्म चीज का जाहरी पेट पे असर होता है ना, इसी तरह सोर्स ऑफ इनकम जब रॉन्ग होता है तो हमारी रूह के पेट पर उसका असर पड़ता है। जिस तरह हमारे जाहरी अज़ा है ना जिस्म, इसी तरह हमारी रूह के भी अज़ा है। तो एक पेट हमें दिखता है, एक इसके अंदर पेट की, जैसे आंखें हैं ना लेकिन आंखों के साथ विजन है, कान है तो इसके साथ हमारी हेयरिंग है, तो इसी तरह रूह का जो पेट है ना उसके ऊपर हराम का असर बहुत बुरा होता है। फिर इसी तरह देखिए शर्मगाह के फितने, बल्कि इसको थोड़ा सॉर्ट समझ लें। अब हम लोग वेस्ट में रहते हैं, हमें हलाल मीट नहीं मिलता किसी जगह पे। आपको बहुत अच्छा लगता है कोई भी चेन फूड, कोई भी नाम ले लीजिए, मिसाल है कि चिकन केंटकी। आप कोई कहता है मैं क्या करूं, मुझे तो उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा स्कूल में हूँ तो फिर वहाँ भूख लगती है तो ब्रेक में जो मिलता है मैं खा लूँ। नहीं खाना। एक दफ़ा एक बच्चियों की क्लास थी तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि बच्चों कभी आपको लगा कि काश मैं मुसलमान ना होती। कभी कभी बच्चों से सच सुनना चाहिए ना। तो बच्चियाँ शेयर कर रही थी तो एक बच्ची ने कहा हाँ। मैंने कहा कब? कहती जब रमज़ान थे, मेरा रोज़ा था और मेरी नॉन मुस्लिम फ्रेंड जो थी वो स्कूल की कैंटीन से एक बड़ा अच्छा बर्गर लेके खा रही थी। तो मैंने सोचा कि कितना अच्छा था, मैं भी ना मुसलमान होती तो आज मैं भी खा रही होती। तो बस दफ़ा ये जो मज़े मज़े के फूड और जो बाहर के खाने होते हैं उससे लोग सब्र नहीं कर पाते। रेगुलर मीट है तो इन सब से इज्तनाब करना चाहिए। अब रहेगी दूसरी बात शर्मगाह के फितने। तो आप देखिए इससे सबसे आम फहम बात क्या है, जिना। औरत और मर्द का कौन सा ताल्लुक? गैर इस्लामी ताल्लुक। शादी निकाह के बगैर किसी लड़की का लड़के से जिस्मानी ताल्लुक जिना कहलाता है। फिर इसकी बहुत सारी तमहीदात होती हैं। असल तो ये प्राइवेट पार्ट का अमल है लेकिन सही बुखारी की एक रिवायत से पता चलता है कि अलाइनानो तजनियानो, आंखें भी जिना करती हैं और आंखों का जिना शहवत के साथ। आम नहीं, यानी लिटरली एक औरत मर्द को अगर देखती है या मर्द की नज़र औरत पे पड़ती है तो ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे मना नहीं किया। इसके बगैर तो फिर गुजारा ही नहीं हो सकता। फिर तो सारी ज़िंदगी का निज़ाम ठप हो जाए कि सारे मर्द भी नज़रें पूरे वक्त नीचे रखें और औरतें भी। बल्कि क्या कहा, यगुद्दु मिन अबसारिहिम, सूरह नूर में ये हुक्म आता है कि अपनी नज़रों का कुछ हिस्सा बचा लिया करो, यानी नज़र पड़ जाए तो हटा लो। लेकिन शहवत से देखना, अब आप इस देखने को घंटों टीवी के आगे बैठ के जब ड्रामे और फिल्मों के नाम पे हम देखते हैं खूबसूरत औरतों को, लड़कियों को, और इसी तरह अगर लड़कियां मर्दों को देखें तो क्या ये आंखों का फितना नहीं है? और उसी से फिर सारी बातें शुरू होती हैं। आंखों का फितना, फिर कानों का फितना, गलत बातें सुनना, हाथों का फितना, चैटिंग, फिर चल के जाना, कदमों का जिना, डेटिंग, फिर उसके बाद दिल तमन्नाएं डालता है, फिर कहीं जाके आखिरी अमल होता कि नहीं होता। तो हमेशा अपने आप को हर तरह से पाक रखिए। मुसलमान बहुत पाकीज़ा होता है। दिल में कोई ख्याल अगर आ जाए तो उस विला पड़े, वो हालात ही ना पैदा होने दें कि ये सारी बातें जो है वो आगे बढ़ने लगे। फिर इसी तरफ देखिए दूसरा फितना है कौमे लूत का, फिर यानी लिवातत बोलते हैं इसको। आज के दौर में ये लफ्ज़ होमोसेक्सुअलिटी के नाम पे आम है, मर्द के मर्द से ताल्लुक। और फिर तीसरा लेस्बियंस, औरत का औरत से ताल्लुक, इसको अरबी में सिहाक कहते हैं, सीन हालिफ का सहे का, बदन से बदन का लिपटना। यानी आप देखिए कि सहाबा किराम कहते हैं कि अगर कुरान पाक में ये तस्करे ना होते तो हम मानते भी ना कि ये अमल भी कभी हो सकता है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि शैतान बंदे को जन्नत से दूर करना चाहता है। और आप देखिए कि लोग नए नए तरीके आजमाने के नाम पर इस किस्म की गंदी चीज़ों में पड़ जाते हैं। पहले कभी ये चीज़ें सुनने भी नहीं आती थी लेकिन अब चूँकि मीडिया नेट आम हुआ, ये चीज़ें मर्दों की रेंज में आई, फिर ये चीज़ें देखी जाने लगी तो फिर उसके बाद उस पर हाथ भी उठते हैं। तो हमेशा अपने आप को पाक करें इन चीज़ों से। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा कौन सा अमल सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम में ले जाने का बायस बनेगा? तो आपने फरमाया मुँह और शर्मगाह। यानी या तो हम अपने मुंह का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं या फिर दूसरी जगह का। तिर्मिज़ी की रिवायत है। इसी तरह देखिए कि वैसे तो तमाम ही फितने गुमराह करने वाले हैं लेकिन गुमराह करने वाले फितनों से मुराद ऐसे फितने हैं जो इंसान को गुमराही में बहुत दूर ले जाएंगे, जिसके बाद हिदायत का इम्कान बाकी ना रहेगा। तो आज हम सबको, ख़ास तौर पर अपने यंगस्टर्स को, अपनी निगाहों को, अपनी चीज़ों को पाक करना है। आप देखिए कि फ़न के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, और खामखास सिर्फ बस चूँकि अब ये उम्र ऐसी है तो फिर ये चीज़ें तो देखनी है, ये तो करनी होगी, इससे बचना चाहिए। आप देखेंगे कि इस तरह आप अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रखेंगे और इसी से फिर बाकी सारे बुरे जज्बात भी शुरू होते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो क़यामत की अलामतों में से हमारे सामने है वो क्या है? फितनतुल दीनी बे अरादित दुनिया, दीन को दौलत दीन के बदले बेचने का फितना। अब पहले तो इसको समझ लीजिए कैसे। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा आखरत बनाने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो थी उन दोनों को जन्नत से भेजा गया और कहा कि कुल नह भी तुम इन जमीयन फम मयातियन को मिन्नी हुदन फमन तभी या खुदा या फला खौफ न लेहिम वला हुम यखसरून, कि तुम अब दुनिया में जाओ, हिदायत तुम्हारी तरफ आएगी, उसको मान जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि हम इस दुनिया में आकर हिदायत की बजाय गुमराही खरीदें। तो लिहाजा दीन खरीदने की बजाय लोग दुनिया खरीदने लगते हैं। ये कैसे होता है, ये इसको देखते हैं। क्यामत से पहले लोग रातों रात अपना दीन और ईमान दौलत दुनिया के इवज बेच डालेंगे। रिवायत है हज़रत अनस बिन मालिक से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले शबे तारीख के टुकड़ों की मानिंद फितने जाहिर होंगे। एक आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम को काफिर, शाम के वक्त मोमिन होगा और सुबह के वक्त काफिर। लोग अपना दीन और ईमान दौलत दुनिया के बदले बेच डालेंगे। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। सूरत बकरा के बिल्कुल आगाज में ही मुनाफिकों के तस्करे पे अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ी नश्तरहु दलालत बिल खुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया। अब आप सोचें कि ये कैसे होता है, अपने ऊपर लें, क्योंकि कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि बस सुन के हम कहते हैं हाँ ऐसा कब होता है, चलो शुक्र है मैं तो नहीं करती। लेकिन अगर आप अपने ऊपर अमली तौर पे गौर करें तो बहुत सारे ऐसे फितने, हम हिदायत कैसे ले सकते थे और हम गुमराही लेते हैं, हम दीन का इल्म सीख सकते हैं, हम जानबूझ के गुमराह रहते हैं, क्या ये दीन के बदले दुनिया नहीं? हमें दीन की दौलत नेकियों और हिदायत की सूरत में जिस वक्त में मिल सकती है उस वक्त को हम मजीद माल कमाने का जरिया बना लेते हैं। माल जो पहले भी बहुत होता है फिर जॉब करने चले जाते हैं और पैसा कमाते हैं, क्या ये बदले नहीं है? फिर आप देखिए कि हम एक रास्ता ज़रा सा पलटते हैं ना तो दूसरा रास्ता खुद ब खुद हमारे हाथों से छूटने लगता है। तो आप यहाँ एक छोटा सा होमवर्क लिखें, अगली क्लास से पहले इसमें डिस्कस करें कि मैं कब दीन के बदले दुनिया की दौलत खरीदती हूँ। ये हर जगह कारोबार हो रहा है, ये हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारे किचन्स में, हमारी तिजारत में, मईशत में, माशरत में हो रहा है। हम अल्लाह को खुश करने के बजाय लोगों को खुश करने लग जाते हैं, हम रस्म व रिवाज के पीछे पड़ते हैं। तो कम से कम 5 मिसालें लिखिए कि मैं कैसे दीन के बदले दुनिया ले लेती हूँ। और फिर साथ ही साथ हमने अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले। अगला फितना क्या होगा, फितना तो कस्बिल हराम, हराम कमाई का फितना। क़यामत के करीब लोग हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी कुछ परवाह न करेगा कि इसने अपने माल हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से। ये बुखारी की रिवायत है। क्या आज आपको ऐसा लगता है, किसी को आप कुछ कह के तो देखे वो कहते हैं अरे आज के दौर में क्या कुछ नहीं होता, आज के दौर में जी सूद के बगैर काम नहीं चलता, जी आज के दौर में तो पाकिस्तान में तो जी रिश्वत के बगैर कोई काम ही नहीं होता, और जी आज के दौर में बैंकों से कर्ज़ा लिए बगैर कौन काम करे। बस यही है, इतना केयरलेस एटीट्यूड कि जैसे नाक पे मक्खी बैठी है उड़ा दी। आज अब गौर से देखे ना तो जायज़ कामों के बीच में भी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। बाकी वो अल्लाह के नबी की हदीस याद आती है कि एक वक्त आएगा कि आदमी अगर जंगलों में चला जाए, घर में छुप के बैठ जाए तो वो तो फितनों से बच जाएगा, अदरवाइज आप देखिए कि किसी न किसी तरीके से घर में ऐसी चीज़ आ जाती है। फिर अगली रिवायत देखिए अबू हुरैरा से, कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया लोगों पर ऐसा वक्त आएगा कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि इसने माल हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से। यह निसाई की रिवायत है। और आप देखिए कि सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक डायरेक्ट बंदे की इबादत से होता है। हराम माल से दिया हुआ सदका कबूल नहीं होता, हराम माल पेट में हो तो इबादत कबूल नहीं होती, और हराम लुकमे पेट में हो तो दुआएं कबूल नहीं होती। और चौथी बात भी याद रखिए, हराम माल हो तो औलादें वालदैन की नाफरमान होती हैं। ये फितना आगे आएगा कि औलादें नाफरमान होंगी। आज जहां इतने बिगाड़ है अगर आप फील करें तो उसके बीच में हराम और हलाल का फर्क है। अब आप कहेंगी कि ये तो हमारा मसला नहीं, ये तो हमारे मर्दों का मसला है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सच है, अल्लाह ने औरत को माल कमाने से पाक रखा है, जिम्मेदारी नहीं, लेकिन क्या वो माल हमारे घरों में नहीं आता? बीवी होने के नाते से हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने शौहर जी से पूछें कि ये बताइए कि घर में कोई ऐसा माल तो नहीं आता। अगर आपको पता है कि आपके शौहर की कमाई 1500 की है और अगर उसमें से भी 1000 का सेट ले आते हैं तो क्या आप नहीं पूछेंगे ये कहाँ से आया है? औरत ब्राह रास्त इन्वॉल्व होती है। और यकीन कीजिए कि अगर हम औरतों की डिमांड्स कम हो जाएं, हमारी ज़िंदगी सादगी पे हो, तो मर्दों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। कभी आप गौर से देखें, मर्द खुद अपने ऊपर क्या लगाते हैं? आप सब अपने मर्दों को जानती हैं, आदत फर्क हो सकती है, किसी को पहनने उड़ने का शौक है, किसी को नहीं, लेकिन अमूमियत के साथ देखिए तो मर्दों का खर्चा औरतों की नस्बत बहुत थोड़ा होता है। दो चार जोड़े, अगर कोई वाइट शलवार कमीज पहनता है तो दो तीन वाइट जोड़े, कोई एक आधा मौसम के हिसाब से फ़र्क, एक जैकेट एक स्वेटर, कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं। कोई जोड़ा एक आधा ऐसा हो सकता है जो कभी किसी अच्छे मौके पे वो पहन लें। मर्दों की ज़रूरतें इतनी नहीं होती, बल्कि एक किसी की बात याद आ गई तो वो कहते हैं बाहर के मुल्क में थे तो कहते हैं कि मैं वहाँ कमाई के लिए गया हुआ था, एक दिन बैठा हुआ मैं कुछ सोचने लगा तो मेरा सर घूमने लगा। क्या? उन्होंने कहा ये जो मैं सारा दिन कमाता हूँ, बच्चों को छोड़ा हुआ है, बीवी को छोड़ा हुआ है, दूसरे मुल्क में गया हुआ हूँ, जो मैं कमाता हूँ इसका तो 90% मैं सब दूसरों को दे देता हूँ, मैं तो शायद ही कोई 10%, कोई गाड़ी की गैस का खर्चा, कोई टेलीफोन का एक बिल। बहुत कम मर्दों को इस तरह आदत होती है कोई पान छलिया खाने की या बाहर खाने की, होते भी हैं कुछ लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। तो एक मर्द अपनी कमाई का जब बेशतर हिस्सा घर वालों पर लगाता है तो अगर घर वालों की सलाह हो जाए तो मर्दों बेचारों को क्या मुश्किल है कि वो हराम कमाई पे आए। और इसकी बहुत ज़रूरत है। इस एक चीज़ को आप कंट्रोल कर लें तो आपके बच्चे आपके फरमाबरदार हो जाएंगे, आपके मर्दों की निगाहें पाक हो जाएंगी। ये आज के दौर में जो बहुत सारे फितने हैं ना चारों तरफ, उसमें बहुत बड़ी वजह कमाई है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। अगला फितना है फितनतुल कासियातिल आरियात, लिबास के बावजूद नंगी औरतों का फितना। फितना तो फितना ही है। कासियात कहते हैं कासियात कपड़े पहनने वालियाँ, कसौत थकल अफसल कुरान में हम पढ़ते हैं ना, कसौत हन्ना उनको लिबास पहनाओ, ठीक है वही। और आरियात उरियानी से है, उरिया हो गई, बरहना होना, नेकेट न्यूड होना, यानी औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी कि कपड़े पहनने के बावजूद उनका जिस्म उससे झलकेगा। ये क़यामत की अलामत है। हदीस सुनेंगे तो और भी ज़्यादा बात वाजे होगी। औरतों का तंग बारीक या उरिया लिबास पहनकर अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करना क़यामत के फितनों में से एक फितना है। बल्कि इस हदीस को आप मेरे साथ दोहराइए, मैं अरबी में बोलती हूँ आप मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये ख़ास तौर पे हम ख़वातीन का मामला है ना, तो अरबी के साथ अरबिक पढ़ेंगे फिर उर्दू भी पढ़ेंगे। तरीका क्या होगा कि मैं पढ़ूंगी आप फिर मेरे पीछे दोहराएंगे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفاني من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كأذنا بالبقر يضربون بها الناس ونساء. یہ حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسهن کاسنمتل بختل مائلتی لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. अब इसका तर्जमा सुनिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। इनमें से एक वो लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कोड़े होंगे। कोड़ा कहते हैं विप को, जिस जानवर को चलाते हैं। जिनसे वो लोगों को यानी अपनी रियाया को मारेंगे। इतने से को समझ लीजिए, इससे मुराद है जालिम हुक्मरान, यानी ऐसे जालिम हुक्मरान होंगे जो अपनी रियाया को मारेंगे। दूसरी किस्म इन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होती हैं, मर्दों को बहकाने वालियाँ और खुद बहकने वालियाँ, इनके सर बुख्ती ऊंटों की कुहान की तरह, बालों में ऊंचे जुड़े लगाने की वजह से एक तरफ झुके होंगे। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तवील मुसाफत से आती है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब आप इस पे बोलें और मैं आपसे सुनती हूँ, क्या आज आपको ऐसी औरतें दिखती हैं कपड़े पहन के? किस तरह बंदा कपड़े पहन के भी न्यूड दिखता है, उसकी दो रीजंस होती हैं। नंबर एक कि कपड़ा बहुत पतला हो, इंग्लिश में इसको आप कहेंगे सी थ्रू और अरबी में इसको कहेंगे शफाफ, ठीक है। और दूसरी वजह होती है जिस्म झलकने की, टाइट, इंग्लिश में टाइट्स कह देंगे, अरबी में आप उसको वसाफ कहेंगे और उर्दू में तो जो भी आप कहेंगे, आज के दौर की टाइट्स मुझे तो समझ ही नहीं आती। मैं हैरान होती हूँ, मेरी अकल गुम होने लगती है। इतने भद्दे जिस्म की औरतों को भी जब मैं इतनी टाइट्स पहन के कि जिस्म क्या, पाँव की टांग, एक एक चीज़ हिस्सा अलग दिखता है, क्या शर्म नहीं आती बात करते हुए भी? हम कभी नहीं सोचते कि जब हम बाहर जाते हैं या हम घर में होते हैं और दूसरे लोग हमें देखते हैं, अगर आप दूर से देखें तो ये पता भी नहीं लगता कुछ पहना हुआ है। देखिए, अल्लाह ने एक खाल तुम्हारे ऊपर चढ़ा दी ना स्किन की सूरत में। जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? अल्लाह ने जानवरों का लिबास उन पर एक ही पहना दिया। बस आप देखिए कि ज़ीब्रा, उसके ऊपर स्ट्रिप्स वाला लिबास है ना, घोड़े के ऊपर ब्राउन लिबास है, इसी तरह आप देख सकते हैं बकरी के ऊपर काला लिबास है। इन जानवरों की खाल जिस्म से सिली हुई इनके कपड़े हैं। इंसानों को भी अल्लाह ने खाल दी ये स्किन कलर की, लेकिन हमें अल्लाह ने इज्जत दी, खूबसूरती है इंसान की लिबास। सूरत अलराफ में अल्लाह ताला ने इसको जीनत कहा, खुजू जीनत को मिंदा कुल्ल मस्जिद, के लिबास जीनत है। आप अपने ऊपर लेके सोचें, नेकेड बंदा कैसा लगता है? गोश्त का पहाड़, कोई अट्रैक्शन है? ये तो शैतान है जो इसको खूबसूरत करके दिखाता है, वरना इंसान खूबसूरत तो नहीं लगता। कपड़े पहन के हम कितने हसीन लगने लगते हैं, जैसे कपड़े होते हैं वैसे लगते हैं। अब आप इस स्किन के ऊपर फिर एक और स्किन चढ़ा लें टाइट्स की सूरत में, और ऊपर आप देखिए छोटी छोटी टॉप्स की सूरत में, तो उसको कपड़े तो नहीं कहते? इस कपड़े का मकसद क्या है? कि मेरे जिस्म की मोटाई, पतलापन, छोटापन छुप जाए। तो अगर मैंने उस खाल के ऊपर फिर एक स्ट्रेची खाल पहना दी तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? और ये जुल्म आप पिछले 2-3 सालों से शिद्दत अख्तियार कर गया। पहले लोग बुरा समझते थे, पहले छोटी बच्चियों की टाइट्स होती थी उसको पता नहीं क्या बोलते थे, नेपीस बोलते थे, या हालांकि वो भी अच्छा नहीं लगता था मुझे कभी, लोगों को लगता है बच्ची है, लेकिन आप तो बच्चियाँ छोड़िए बड़ी औरतें, लोग कहते हैं जी ऊपर कमीज तो पहनी है लेकिन साइड से चौक्स नहीं दिखते। कमीज़ें बात इतनी सीथ्रो होती हैं, जब चलती फिरती हैं बाहर से रोशनी पड़ती है तो जिस्म का एक एक फिगर दिखता है। तो ये क़यामत की अलामतें हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी चीज़ इसमें माइलात, मर्दों को माइल करती हैं। हम औरतें जब ऐसी औरतों को देखते हैं या जिन्होंने बहुत पहनना ओढ़ा हो, तो हमारे जहन में नहीं आता कि ये औरत कैसी लग रही है, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, तो मर्द क्या सोचते होंगे? सोचा कभी आपने? इसीलिए इस्लाम का एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। फिर आप देखिए कि खुद भी बहकती हैं और बहकाती भी हैं, डोरे डालना, सूरत यूसुफ आने वाली है इंशाल्लाह आप सुनेंगे। फिर इसी तरह देखिए कि सर बुख्ती ऊँटों की कोहान की तरह, इसके बारे में आप क्या कहें? ये तो मैंने अब कोई 1.5 साल से फितना देखा है, सर के ऊपर एक पूरी कोहान सी बना के फिर उसके अंदर यानी कोई जूड़ा रख लेना। हर दौर में इसका रिवाज फ़र्क होता है। पहले मोपिट्स होते थे, औरतें अपने बालों के अंदर वो रख के तो बाल ऊंचे कर लेती थी। और अब मैंने देखा है कि आम लोगों का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले मौका मिला उम्रे पे जाने का, तो वहाँ कुछ लोगों से इल्मी तौर पे बातें भी हुई। तो हमारी एक सिस्टर थी होस्ट, उन्होंने हमें बताया कि आपको पता है कि आजकल हरम में खुतबे जो होते हैं इमाम काबा या जो भी वहाँ देते होंगे, तो वो आजकल जिस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं वो औरतों का स्कार्फ के अंदर कुछ इस किस्म की चीजें रख लेना कि जिससे सर के ऊपर एक ऊपर अलग से टोपी सी बन जाती है, और वो शिद्दत से मना कर रहे हैं कि ये इसमें आ रहा है जो हदीस आपके सामने है कि बुख्ती ऊंटों के सर पूरी कोहान। पहले दुल्हन के लिए लोग करते थे इस तरह की चीजें कि उसका दुपट्टा ठहराना है कुछ है, अब हर एक कोई अपनी नुमाइश है। अब देखिए हम स्कार्फ क्यों पहनते हैं, हम अबाया क्यों पहनते हैं, ताकि हमारी खूबसूरती छुपे, और खूबसूरत तो नहीं बनना। और जो दुख और तकलीफ और नॉनसेंस चीज लगती है कि सर पे स्कार्फ और जिस्म सर से पांव तक टाइट्स में, एक एक जिस्म का अंग दिखता है, तो आप सर पे एक पट्टा सा छोटा रख के लोगों को और दिखा रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो आप देखिए कि मुसलमान औरत अगर खुद अकल भी इस्तेमाल करे, मत सूरत नूर को पढ़े, मत सब सूरत अल अराफ को पढ़े, सूरत अल अहज़ाब अभी आपने नहीं पढ़ी, ठीक है, अकल से पूछिए कि अकल इसको क्या कहती है। और इन्होंने लिखा है कि लेगिंग्स कहते थे, बिल्कुल जजाकला, यही लफ्ज था मेरे जहन में, पहले बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों की लेगिंग्स होती थी, दैट्स इट, फिर भी उसके ऊपर घर के सिले हुए लंबे लंबे फ्राक होते थे, अब तो कोई हद ही खत्म हो गई है। तो अगर मैं और आप इन चीजों को सुन के इससे नहीं बचेंगे तो क्या फायदा मेरे और आपके इस किताब को पढ़ने का, ऐसी सब चीजें खत्म करते हैं। लोग कहते हैं नहीं अंदर पहन लेंगे, औरतों में पहन ले, ये क्या बात है, औरतों में पहनने होंगे तो बाहर वाले भी देखेंगे, और दूसरी बात है कि जब एक चीज है ही नहीं है तो फिर उसको अपने पास रखते कैसे हैं, कोई भी काम करे, बास कहते सर्दी में पहनते हैं, बास कहते गर्मी। मैं सोचती हूँ जो मसले औरतों के साथ है, गर्मियां आती हैं आप देखिए मर्दों की पैंट्स पूरी होती हैं, मर्दों की शर्ट्स पूरी होती है फुल बाजू, और बाहर देखें तो औरतें जो वो सबसे पहले जिस्म खोल के आती हैं। गर्मी भी औरतों को ज्यादा लगती है, सर्दी भी उनको ज्यादा लगती है, और मर्द बेचारे ढीले ढाले पहनते हैं। तो ये सिर्फ शैतान का एक शोशा है। और आप देखिए हदीस के लफ्ज़ कहें कि वो जन्नत में नहीं जाएंगी और जन्नत की खुशबू ना सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू दूर से आ रही होगी कजा व कजा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी आंखों में हया डाल दे और हम इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। आप में से किसी का कोई सवाल हो इस बारे में, कुछ पूछना चाहें तो पूछिए जी। आप प्लीज़
कोई बंदे कहते हैं कि जो जुड़ा है वो गुनाह नहीं है, कोई कहते हैं कि साथ में तो कहीं किसी को कहते हैं।
देखिए पहली बात आपकी इस बात के ऊपर जवाब देती हूँ, जब आप ये कहते हैं ना कभी भी कि लोग कहते हैं, तो वो लोग कौन है? कुरान में हमेशा कुल आया, अल्लाह के नबी को कहा कि आप कहिए, जहां भी दूसरों की बातें हो के काल अल्लज़ीना قال الذين لا يرجون لقاءنا, तो लोगों की क्या हैसियत है? हमेशा देखिए आपके सामने हदीस है ना, अब इसकी आप जितनी मर्जी वजाहतें जाके पढ़िए हदीस में, आपको इसके मुख्तलिफ तरीके समझ आ जाएंगे, बाकी तेरे मेरे आपके कहने की कोई हैसियत नहीं। ख्वाहिशों की वजह से तो लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें जायज की हुई हैं। ठीक है जी, आप
अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेटी ने मुझे एक बात कही कि मैं जो भी सुनती हूँ जिधर से भी बयान अच्छा जरूर कर, मैं उसको जाके बताती हूँ। वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मैं अभी बताऊंगी। कहती है आपने जो हमें बताया ना, इतनी लड़कियां स्कूलों में जो अपनी इज्जत गुआ बैठती हैं, ये वो करती हैं और डिप्रेशन में रहती हैं, लेकिन क्योंकि आपने हमेशा मुझे तंगी रखा और हर चीज बताई सही गलत और रास्ता बताया शर्मने की शर्मिली बातों पर, और सारी बातें जो औरतों की होती है जैसे बड़ी होती हैं पीरियड्स होते हैं, जो मुझसे बात की खुल के, इस वजह से आपकी वजह से मैं कभी दूसरी की तरफ देखती भी नहीं हूँ।
ठीक, क्योंकि आप देखिए अंडरस्टैंडिंग हो ना अगर माँ बेटी में, घर में माहौल ऐसा हो तो पता लग जाता
कि उसके साथ अगर आप बात नहीं करोगे दीन के हवाले से सही तरह तो वो गलत जगह से बातें।
जी ये सवाल एक इनकी तरफ से आया, यानी आप ये कहना चाह रही
हैं। सवाल ये है कि एक सवाल ये भी है कि आजकल इतना ये चल रहा है होमोसेक्सुअलिटी और ये गलत चीज़ें, और सवाल इस बात पर है कि वो लोग कहते हैं जो ऐसे हैं कि हमें अट्रैक्शन है उस इंसान व्हाटएवर से, और हम कहते हैं ये हराम है ये गलत है, इस्लाम दीन क्या कहता है इस बारे में, कि ये लोग जान के कितना खुद उन्होंने बनाया कि खुद पसंद करते हैं ऐसे रहने गलत हराम में,
देखिए इनका
ऐसा
सवाल
है,
है
इससे दूर रहना चाहिए, क्या बात है?
देखिए मुझे तो बस यही बात समझ आती है कि फमाज अबाद अल हक दलाल, कुरान पाक में आता है सूरह यूनुस में कि जब इंसान हक का रास्ता छोड़ता है ना तो उसके पास सिर्फ गुमराही का रास्ता है। अब ये जो बात, इनका सवाल बहुत क्लियर है कि होमोसेक्सुअल्स कहते हैं कि हमें इसमें अट्रैक्शन फील होती है, तो इसमें क्या बुरी बात है, इस्लाम क्यों मना करता है? तो आप देखिए कि हर जिस्म का जो उस है ना, उसका एक मकसद है। खाना खाते हैं तो कहाँ करते हैं, खाना मुंह में डालते हैं ना, राइट? अगर कभी आप किसी को खाने का लकमा मुंह में डालने के बजाय कान में डालता देखें तो बेवकूफ़ कहेंगे ना कि पागल है। इसी तरह दवाई आँख में डालने के बजाय आप कान में डाल दें। हर जिस्म के उसका हिस्सा, इसी तरह जो प्राइवेट पार्ट्स है ना, इसका एक मकसद है। मुंह में खाना खाते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। प्राइवेट पार्ट का मकसद जो है नस्ल है, अल्लाह ताला चाहता है कि इससे औलाद हासिल की जाए, ये इसका मकसद है, द रीजन टू मेक दिस, राइट? अब इस मकसद को किस तरीके से फिलअप करेंगे जब नेचुरल होगा? इस्लाम ने उसके लिए लीगल पाबंदियाँ लगा दी, शादी के बगैर नहीं शादी। अब जिस चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं वो तो ना अक्ल में आती है, ना दिल में आती है, ना दिमाग में आती है, लेकिन शैतान ने दावा किया था कि मैं लोगों को बहकाऊंगा। उसने ये चीज़ें इतनी आम कर दी कि अब लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगने लग गई, हालांकि इसमें अच्छी बात नहीं है। आप देखिए, अकल से भी पूछिए तो ये गैर फितरी चीज़ है, वो सेटिस्फेक्शन कभी हो ही नहीं सकती जो एक नेचुरल होती है। तो बस ऐसे लोगों के लिए दुआ करें और उनको जितना ज़्यादा हो इस्लाम की ये बातें, ख़ासतौर पे इसको इल्म की बुनियाद पे पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत निसा में हमने इस मौजू को बड़ी डिटेल से क्लास में पढ़ा था, आयतें आई थी कि जिसमें इस मौजू की बात हुई थी, तो बिल्कुल ये क्लियर है। और वो कहते हैं ये नेचुरल है, ये बीमारी नहीं, ये नफ्स की बीमारी है जी, ये शैतान की बीमारी है डाली हुई। कहते हैं ये जीन्स में जी, ये बात जो ये कह रही है इससे ज़्यादा मैंने सुनी हुई है। कहते हैं ये जीन्स में अट्रैक्शन होती है। मैं आप ये सोचिए हमारी नस्लों के साथ क्या होगा, और इसके लिए वो सारे मीन्स बंद कीजिए। पिछले सेशन में बात हुई थी कि बच्चे 10 साल के हो जाएं तो बिस्तर अलग कर दें, अकेले ना रहने दें, कमरों में टीवी इनको बिल्कुल ना दें, कंप्यूटर इनको ऐसे अलग से अनअटेंडेडली यूज़ ना करने दें, और सबसे बढ़ के अपने बच्चों की सोच का तस्किया करें। अभी इंशाल्लाह सूरत नूर आने वाली है, या आपने से जो भी इधर से सुन रहे हैं ऑनलाइन पे भी लंदन से, तो आप सिर्फ सूरत यूसुफ सुनने के लिए आ जाइए। मैं कह सकती हूँ कि उसमें जितने खूबसूरत तरीके से यूथ एज के फितनों की बात की गई है, शायद मैं तो उस तरह कभी भी नहीं बयान कर सकती जब तक सामने आयतें ना खुलें। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करें कसरत से, और सारी वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जिससे हम सब अपने आप को इन फितनों से बचा सकें।